माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई নিতাই গৌর হরিব 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় গুরুদেব 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 জয় শ্রী রাধা মাধব কি জয় শ্রী রাধা গোবিন্দ দেব কি जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी की जय श्री श्री गौर निताई की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय शांत भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे हरि ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजन शलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले शेङ्गरूपकदामय ददाति शपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोदपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौरीतिशे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 9-7। नंद सुत बोली जारे भागवते गाय। नंद सुत बोली जारे भागवते श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। व्हाट टू व्हाट मीनिंग। नंद सुत नंद महाराज के पुत्र बलि जैसे जा रे जो भागवत श्रीमद भागवत में गाय गाया जाता है से वही कृष्ण भगवान कृष्ण अवतीर्ण अवतरित हुए है चैतन्य गोसाई भगवान चैतन्य महाप्रभु। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बदलाता है वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य साहित्य में अच्छी रचना के आलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य कर्ता आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है। अतएव तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं, किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जैसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है, न ही व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अतः भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है उनकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक साहित्य के शक पर होनी चाहिए। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियाँ है जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भागवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंदोसुत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंदोसुत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का वो निर्णय बताते हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेकर इसको सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्व सत्व के अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के भी उद्गम है। वही परम सत्व जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होता है। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो ये भगवान के बारे चर्चा चल रहा था, तो कल तो समय नहीं था, इसलिए फिर इस श्लोक पर आज चर्चा चल रहा है। तो ये जो भगवान शब्दों में जो भ ग ब ये तीन सिलेबल्स के क्या अर्थ है हम सब बताया था। तो पहले भ का मतलब क्या था, न पालो और रोख सको। ग का मतलब क्या था, नेता, आगे बढ़ाने वाला। और क्या है, सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता। ब का मतलब निवास करना, हर जी भगवान निवास करते हैं, भगवान अंतर्जामी परमात्मा रूप से हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इस पर चर्चा चल रहा था। तो ये जो भगवान, वो भगवान कौन है, शरीसज्ज परिपूर्ण जो भगवान है वो कृष्ण है। हा? तो कृष्ण रसों के स्रोत है, उद्गम है। कितने प्रकार रस है, 12 प्रकार के रस है। तो उनमें से 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। 5 मुख्य रस क्या क्या है, शांत, दास, सख, वत्सल, माधुर्य। और 7 गौण रस क्या है, अद्भुत, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स। ये 7 गौण रस है। तो ये भगवान का असंख्य अवतार है। असंख्य अवतारा ही हरि असंख्य। असंख्य अवतार में से 10 प्रमुख अवतार लेकर के जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र लिखे हैं। हाँ? तो भगवान कृष्ण एक एक अवतार रूप धारण करके आके कौन सा रस आस्वादन किए, इसके बारे हमारा प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये अभिमत प्रकट किए। पहले भगवान कृष्ण मीन अवतार रूप धारण करके आए थे। मीन अवतार रूप धारण करके जब आए थे भगवान कृष्ण, उस लीला में भगवान कौन सा रस आस्वादन किए मीन अवतार में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताते हैं। वो मीन अवतार रूप धारण करके जब भगवान कृष्ण आए थे, उस लीला में भगवान कृष्ण विभत्स रस आस्वादन किए। तो विभत्स कौन कैटेगरी में है, गौण सेकेंडरी में लो जा। तो गौण रस ये एक गौण रस है, ये वो जो विभत्स रस, हाँ, विभत्स रस एक गौण रस है कि नहीं। ऐसा ही इसके बाद भगवान कृष्ण जब कूर्म रूप धारण करके आए थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, अद्भुत रस आस्वादन किए। अद्भुत ये रस भी एक गौण रस है। हाँ? तो अद्भुत रस, क्योंकि जब असुर देवता स्थिर समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय वो वासुकी नाग वो मंथन का दौड़े ओरसी है। लेकिन वो आधार जो दंड है, मतलब दंड जो है वो मंदर पर्वत है, लेकिन मंदर पर किसी पर आधारित नहीं था। इसीलिए मंथन के समय क्या हो रहा था, वो नीचे जा रहा था। इसीलिए नीचे जब जाता था, उस समय भगवान कृष्ण ये कूर्म रूप धारण करके अपना पीठ पर ये मंदर पर्वत को धारण किए थे। तो कूर्म का आकार कितना था, हाँ, तो प्रभुपाद अपना तत्पर्य में व्यक्त किए, तो भागवत में उल्लेख है 1,00,000 जोजन कूर्म का आकार था। तो 1 जोजन का मतलब क्या है, कितना किलोमीटर है, 1 जोजन का मतलब 12 किलोमीटर है। हाँ, तो 1,00,000 जोजन का मतलब कितना किलोमीटर है, हाँ, 12,00,000 किलोमीटर व्यापी एक कूर्म का आकार था। हाँ, वो कूर्म का जो निश्वास, हाँ, निकाला था, उस समय वो शीर समुद्र वो तरंग और जो ढेव वेव्स, हाँ, उगता था। हाँ, उस दिन से वही तरंग अभी भी वो समुद्र में ऐसा ही उगते है, उसमें विलीन होता है। हाँ? इसीलिए वो एक विद्यापति ठाकुर की कविता, कत चतुरान ने मरी मरी जाओ तो न तो आदि अवसान, आदि अनादिक नाथ कहे अवतार न भार तुहारा, कत चतुरानन मरी मरी जाओ तो न तो आदि अवसान, तो हे जन्मी पुनः तो हे समात सागर लहरी समान। सागर के जो लहरी है तो क्या गिन सकते हैं एक दिन भाई एक घंटा कितना लहरी उगता है, कितना लहरी विलीन होता है, कोई गिन सकता है? तो ऐसे कितना ब्रह्मा जी आते हैं, कितना ब्रह्मा जी जाते हैं, इसका कोई ये नहीं, हिसाब नहीं है। तो इसलिए ये विद्यापति ठाकुर ने ऐसे ही बोला है। तो और जो भी हो तो ये कुर्मा का रूप धारण करके ऐसे ही भगवान अद्भुत रस आस्वादन किए। इसके बाद भगवान कृष्ण जब शुक्र रूप धारण करके आए थे, उस लीला में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए? तो भयंकर रस, भयंकर एक रस है तो गौण रस है, सेकेंडरी मिल रहा, तो भयंकर आस्वादन किए। क्योंकि जब ब्रह्मा जी वो सैंभव मनु शतरूपा ये दोनों को आदेश दे थे, तुम पृथ्वी दोनों पृथ्वी पर जाके प्रजा सृष्टि करो, सृष्टि करने के लिए आदेश देता, तो पिता का आदेश लेकर के जब आए थे, देखा पृथ्वी अपना स्थान पर नहीं है, वो पृथ्वी कहाँ चला गया? गर्भ समुद्र के नीचे चला गया। तो फिर वो लौट करके वो ब्रह्मा जी के पास जब ये बात बताया, तो पृथ्वी तो अपना स्थान पर नहीं, कहाँ पे हम प्रजा सृष्टि करेंगे? तो ब्रह्मा जी मन में सोचते थे, तो उस समय ब्रह्मा जी का नाक से एक सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान शुक्र रूप धारण करके प्रकट हो गए, आकाश में उत्थित हो गया, और देखते कैसा विशाल रूप धारण किया, ऐसा कि पर्वत से भी विशाल रूप, हिमालय पर्वत से भी विशाल रूप धारण करके गर्भ समुद्र में गिर गए। गर्भ समुद्र पेट फट गया, सीधे चला गया नीचे। और शुकर नाम इसीलिए हुआ, शू शू करके वो अपना खाद्य वस्तु अन्वेषण करता है, इसीलिए शुकर। तो वो जो ये सब शुकर है, वो सब क्या मलमूत्र कहाँ है, खाने का चीज, इसलिए शू शू कर रहे हैं। लेकिन भगवान वो तो अलग लीला है, तो वो शुकर रूप धारण करके जब आए थे, गौरव तो नीचे चला गया, जाके शू शू कर रहा, क्योंकि कहाँ पर पृथ्वी है, इसीलिए पृथ्वी तो गौरव नीचे है, तो शू शू करके जब पृथ्वी का मिल गया, तो पृथ्वी अपना दंत पर दांत पर बैठा करके ऊपर लेकर के आए थे। तो भगवान कृष्ण इस अवतार में शुक्र रूप धारण करके वो भयंकर रस, भयंकर एक शुक्र रूप धारण कर रहे थे, इसलिए भयंकर रस आस्वादन किए। इसके बाद भगवान कृष्ण जब नृसिंह रूप धारण करके आए थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए? उस अवतार भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर ने ये बताते हैं, उस अवतार में वो वात्सल्य रस आस्वादन किए, उसके साथ साथ वीर रस, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जितने सारे अनुयायी थे वो सभी के साथ युद्ध करके वो वीर रस आस्वादन किए, लेकिन उससे भी ये वात्सल्य रस प्राधान्य लाभ किए। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर ने बताता है, जो भगवान कृष्ण जब नृसिंह रूप धारण करके आए थे, उस अवतार में ये वात्सल्य रस आस्वादन किए, क्योंकि भगवान कृष्ण जब नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को वध किए, हिरण्यकश्यप हजारों हजारों अनुगामी जब आते थे युद्ध करने के लिए, वो सभी के साथ युद्ध करके सबको मार डाले, तब नृसिंह देव का रूप अति उग्र रूप उस समय प्रकट हो गया। तो उग्र रूप उस समय तो कोई शत्रु नहीं थे उसके पास, सब तो मार डाले थे। तो इसके बाद वो जितने सारे देवता, ब्रह्मा शिव आदि जितने सारे देवता वहाँ पे उपस्थित है गए, लेकिन नृसिंहदेव जी का जो भयंकर रूप, उग्र रूप देखभाल करके वो हिरण्य का नृसिंहदेव के प्रसन्न करने के लिए कोई पास में आए नहीं, भीतत्रस्त हो गए। उस लक्ष्मी जी वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन लक्ष्मी जी मन में सोचा, मैं तो कभी ऐसा रूप मेरा स्वामी का ऐसा कभी रूप देखे नहीं, तो उन्होंने भी वो आए नहीं नृसिंहदेव के पास, भयभीत हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी उन्होंने मन में सोचा, ये भगवान किसके लगे अवतार, किसके लिए अवतार हुए है, वो तो प्रह्लाद के लिए, तो प्रह्लाद को भेजा, बस तुम जाके वो भगवान को प्रसन्न ये प्रसन्न करो। तो जब जब ऐसा ही ब्रह्मा जी आदेश किए, अनुरोध किए, तब प्रह्लाद महाराज निर्भीक, भगवान के भक्त होने के कारण निर्भीक है, निर्भीक भाव से आके जब भगवान नृसिंहदेव के प्रणाम कर रहे, दंडवत प्रणाम कर रहे, तब वो भगवान नृसिंहदेव का उग्र रूप अंतरित हो गया, और उसमें भगवान सौम्य रूप शांत रूप धारण किए। तो शांत रूप जब धारण किए तो उस समय भगवान क्या किए, अपना वो हाथ प्रह्लाद के सिर पर रखे, तो प्रह्लाद के जितने सारे वैदिक ज्ञान वो हृदय में प्रकट हो गए। उस समय प्रह्लाद महाराज स्तुति कर रहे थे, तो प्रह्लाद को ले करके अपना गोद पर बैठा है। आप प्रह्लाद, और प्रह्लाद जब नृसिंहदेव के गोद में बैठे, प्रह्लाद के मन में इतना आनंद, इतना आनंद, तो वो आनंद कैसा आनंद उसके बारे नृसिंहदेव कोई पता नहीं था। हाँ, उन्हें चिंता कर, पिता माता के गोद में बैठाने से कैसा आनंद होता वो उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। हाँ, जैसे कृष्ण स्वयं परमेश्वर भगवान होते हुए भी राधा रानी का प्रेम का माधुरी कैसा है उसके बारे में कोई पता नहीं था। हाँ, आओ कृष्ण का माधुर्य माधुर्य रूप आस्वादन करके राधा रानी के अंतर में जो सुख होता है वो सुख कैसा था वो भी कृष्ण का पता नहीं था, और कृष्ण का माधुर्य कैसा है वो भी अपना पता नहीं था। इसीलिए तीन वांछा अपूर्ण था, वो पूर्ण करने के लिए वही कृष्ण आया चैतन्य महाप्रभु लेकर के। हाँ, तो ऐसा ये नृसिंहदेव उन्होंने मन में सोचा कि पिता माता जी के गोद पर बैठने की कैसा आनंद होता उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, मेरा पिता तो वो ये खम्बा है। हाँ, नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप प्रासाद में ये खम्बा, खम्बा जो है, हाँ, पिलर, तो उस पर बैठने कैसा आनंद उठाएंगे। तो इसीलिए उस दिन से भगवान का मन में ये लोभ प्रकट हो गया। हाँ, इसके बाद जब कोई अवतार रूप धारण करके आऊंगा तो कभी ऐसे पिता माता छोड़ करके नहीं, पिता माता केंद्र करके तब आऊंगा। हाँ, तो इस तक जितने सारे अवतार भगवान हुआ था, वो मीन अवतार, वो कुर्म अवतार, शुकर अवतार, नृसिंह अवतार, ये सब अवतार के कोई पिता माता नहीं थे। हाँ, ये सब माना जाता अद्वारक। हाँ, इसके बाद जब पिता माता केंद्र करके आए थे, पिता माता के गोद में गोद पर बैठे, बैठने के बाद कैसा आनंद होता वो आनंद उठाने के लिए आए थे। तो इसके बाद वो वामन अवतार पिता माता केंद्र करके आए थे, इसके बाद राम अवतार पिता माता केंद्र करके आए थे, इसके बाद कृष्ण अवतार वो पिता माता केंद्र करके आए थे। ये सभी का माना जाता है सद्वारक, दो प्रकार के, पिता माता विहीन जो भगवान का अवतार है वो अद्वारक, आप पिता माता केंद्र करके जब आते हैं वो सभी माना जाता है सद्वारक। तो भगवान कृष्ण ये नृसिंह रूप धारण करके जब आए थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, वात्सल्य रस, बीज रस के साथ साथ वात्सल्य रस, वात्सल्य रस प्राधान्य किया। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सभी ये मत व्यक्त किया। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप धारण करके आए थे, वामन रूप। वामन अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, वामन अवतार में भगवान कृष्ण शक्कर रस आस्वादन किए, क्योंकि बोली महाराज के साथ शक्कर स्थापन करके बोली महाराज के जितने सारे भौतिक चीज वो सब छीन ले। इसके बाद बोली महाराज कौन सा चीज प्रदान किए, भक्ति, जो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धन है। हा? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन। हाँ, ये जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होना, ये हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ही वस्तु भगवान वामदेव किसका प्रदान किए, बलि महाराज को प्रदान किए, इसीलिए बलि महाराज के साथ सख तो स्थापन किए, लेकिन इंद्र के लिए आए थे वामन देव, और इंद्र को क्या किए, इंद्र के वास्तव में वंचित किए, भौतिक धन उनका प्रदान करके स्वर्ग उनका वापस लौट दे, तो इसीलिए वो इंद्र को वंचित करके वास्तव वो जो हित किसका प्रदान किए, बलि महाराज के, हाँ। तो इसीलिए इस अवतार में भगवान कृष्ण जब वामन अवतार रूप धारण करके आए थे, तो उस अवतार में भगवान कृष्ण ने सख रस आस्वादन किए। सख रस एक मुख्य रस है कि प्रमुख रस है, हाँ। ऐसा ही नृसिंह अवतार में वात्सल्य रस वो भी प्रमुख रस है, और जितने सारे ये सब गौण रस है, हाँ। इसके बाद भगवान कृष्ण जब भृगुपति परशुराम रूप धारण करके आए थे, उस अवतार में भगवान कौन सा रस आस्वादन किए, उस अवतार में भगवान कृष्ण रौद्र रस, रौद्र रस एक गौण रस है, 21 बार निक्षत्रिय, हाँ, क्षत्रिय बना दिया पृथ्वी पृष्ठ, इसीलिए उस अवतार में भगवान कृष्ण रौद्र रस आस्वादन करे। इसके बाद भगवान कृष्ण कौन सा रूप धारण करके आए थे, राम रूप धारण करके आए थे। राम अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रस आस्वादन किए, उस अवतार में वीर रस के साथ साथ करुण रस आस्वादन किए, दोनों ही गौण रस है, वीर रस और करुण रस, क्योंकि रामचंद्र जी के इंटर जीवन ट्रेजिडी में है कि नहीं, हाँ। रात अवसान के बाद जब अयोध्या सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्तुत हो गए, उस समय उनके विमाता वो कैकेयी दो बार दशरथ से मांग लिए, वो दो बार क्या था, 14 साल के लिए रामचंद्र को वनवास जाना है, हाँ। और उनके अनुपस्थित से क्या होगा, अपना बेटा जो भरत राजगद्दी में बैठेंगे, तो ये दो बार जब दशरथ से मांग लिए, तब तो उस समय रामचंद्र वो वन में चले गए, हाँ। ट्रेजेडी, रामचंद्र इंटायर जीवन ट्रेजेडी में भरपूर है, हाँ। तो वन में चले गए, उनके साथ कौन गए, भाई लक्ष्मण और प्रियतमा पत्नी वो सीता देवी, हाँ। आ सीता देवी जब वो दंडकारण वन में जो पंचवटी है वहाँ पे जब थे, लक्ष्मण और रामचंद्र जी की अनुपस्थिति से क्या हुआ, वहाँ पे राक्षसराज रावण आके सीता देवी को हर ले, ये इंटर जीवन ट्रेजेडी में है। इसके बाद वो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण रावण ये सभी के साथ युद्ध करके वो सभी को मार डाले, बात किए, इसके बाद सीता देवी को उद्धार किए। सीता देवी को जब उद्धार किए, तब भी सीता देवी को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोले, तब सीता देवी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, हाँ। इसके बाद सीता देवी को लेकर के जब अयोध्या राजगद्दी में बैठे रामचंद्र जी, तो एक समय प्रजाओं के मनोभाव समझने के लिए जब छद्म रूप धारण करके घूमते रहते थे, तो देखा एक धोबा, हाँ, धोबा, हाँ, धोबा के स्त्री एक रात बाहर में थे, अगले दिन जब आए थे तो उस समय धोबा ने बोला, तुम तो एक रात बाहर में थे इसीलिए तुम असती बन गए, मैं तुमको ग्रहण नहीं करूँगा। तो उस समय वो उन्होंने क्या बताए, जे मैं तो एक रात बाहर में थे, और वो सीता देवी 10 महीना बाहर में थे, रामचंद्र क्या किए, उनका पत्नी रूप से ग्रहण किए, तो मैं एक रात बाहर में थे इसीलिए मैं असती बन गया, सीता देवी सीता 10 महीना बाहर में थे, वो तो रामचंद्र लेकर के वो रानी बने, हाँ। तो ये कैसा है, तो तब ये बात जब सुने भगवान रामचंद्र, तो आके लक्ष्मण को आदेश के, तुम ये सीता को लेकर के वाल्मीकि मुनि के तपोवन में छोड़ दो। तो लक्ष्मण जी सुन करके बहुत मर्माहत हो गए, हाँ, दुखित हो गए, क्यों, ये कौन सा दोष है, हाँ। लेकिन मुन ने कोई ये उत्तर नहीं मिला, तो जो बहुत दुखित बन गया, तो उस समय क्या किया, तो बड़ा भाई है राम जी, श्री राम जी, तो उनके पर कोई युक्ति नहीं चलेगा, हाँ। तो इसीलिए क्या किए, उस समय प्रतिज्ञा किए। इसके बाद जब अवतार रूप धारण करके आऊंगा तो कभी छोटा भाई बन करके आऊंगा नहीं। इसके बाद वो लक्ष्मण जी जब आए थे कृष्ण लीला में बलराम रूप, बलराम बड़े भाई रूप लेकर के आए थे। आ महाप्रभु लीला में ऐसा ही वही लक्ष्मण जी का नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के बड़े भाई रूप लेकर के आए थे। तो ये लक्ष्मण जी बहुत दुखित हो गए उस समय। तो ये तत्पर क्या हुआ, उसके बाद वो भगवान रामचंद्र के सीता देवी से दो पुत्र वहाँ पे जन्म लिया वाल्मीकि मुनि के तपोवन में। हाँ, तो दोनों को रामायण शिक्षा प्रदान किया वाल्मीकि मुनि। तो लव कुश जब अयोध्या नगरी में आके वो रामायण गीत गाते थे, वो सुन करके जगदूतावास मोहित हो गए। ऐसा कि रामचंद्र जी का महल में जब आके जब गीत गाए तो वहाँ पे जितने सारे थे ऑडियंस सब मोहित हो गए। तो उस समय वाल्मीकि मुनि सीता देवी को लेकर के वहाँ पे उपस्थित होकर के बोल रहे थे, हे श्री राम जी, ये दोनों आपकी पुत्र है, लेकिन रामचंद्र वो ग्रहण नहीं किए उस समय। अब बोले ये सीता देवी ये महासती है, तो आप इनके ग्रहण कीजिए। तो उस समय रामचंद्र जी फिर बात उठाए जे इतना दिन बाहर में थे, इसलिए वो अग्नि परीक्षा देना चाहिए। तब ये बात जब सुने सीता देवी उस समय बहुत दुखी थे गए। उस समय सीता देवी क्या किए, ये धरित्री माता को आह्वान किया। धरित्री माता जहाँ जब वहाँ पे प्रकट हो गए, धरित्री माता के गोद में बैठ करके सीता देवी अंतरित हो गए। इसके बाद रामचंद्र जी लव कुश के पुत्र रूप से ग्रहण करके राजा बना दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब लक्ष्मण ये काल पुरुष आए थे रामचंद्र जी के साथ एकांत बातचीत करने के लिए, तो उस समय ये बात उठाता है, हम दोनों के बीच में जब बातचीत होगा कोई अंदर में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जो प्रवेश करेगा उनका मृत्युदंड देना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को वो दायित्व दिया था भगवान रामचंद्र। और राम और जो काल पुरुष दोनों ही एकांत में ऐसा ही बातचीत कर रहे थे। इसी समय क्या हुआ, दुर्वासा मुनि यहाँ पे आ गए। दुर्वासा आके बोल रहे थे, मुझे वो ये रामचंद्र जी के साथ मुलाकात करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे वो अंदर के जाने लिए अनुमति दो। तो लक्ष्मण जी बोले थे, आप कुछ समय अपेक्षा कीजिए, प्रभु जब बाहर में आएंगे तब उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि इतना क्रोधित हो गए, बोले मुझे अभी जाना नहीं देंगे तो क्या करूँगा, मैं अभिशाप दूंगा। अभिशाप से क्या होगा, जितने सारे अयोध्यावासी आदमी अयोध्यावासी आदमी के साथ अयोध्या भस्मीभूत हो जाएगा। तो लक्ष्मण वो सभी को बचाने के लिए क्या किए, शर्त तोड़ करके वो अंदर में चला गया। तो इसीलिए लक्ष्मण ये काल पुरुष साथ साथ अंतरित हो गए। और रामचंद्र लक्ष्मण का प्राण दंडादेश देने के लिए एक सभा बुलाए। सभा में जब उपस्थित थे उस समय दुर्वासा ये उनका वशिष्ठ मुनि को पूछे, तो वशिष्ठ मुनि कोई उत्तर उस समय नहीं दिया। तो उस समय हनुमान वहाँ पे बोल रहे थे, जे लक्ष्मण जी जेहेतु ये क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को त्याग करना मृत्युदंडादेश के समान है। हाँ, ये बात जब उठा सब मान लिए। इसलिए रामचंद्र अपना जो सबसे प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण जी को त्याग दिए। इंटर रामलीला ट्रेजिडी में भरपूर, इसीलिए वो भक्ति सिद्धांत सारिठक ने ये बताते हैं, भगवान कृष्ण जब राम रूप धारण करके आए थे उस अवतार में भगवान ये करुण रस आस्वादन किया। इसके बाद भगवान कौन सा रूप धारण करके आए थे, हलधर रूप धारण करके आए थे। हलधर रूप जब धारण करके आए थे उस अवतार में भगवान कौन सा रस आस्वादन किए, न हास्य रस, क्योंकि बलराम जी अपने प्रेयसियों के लेकर के जब जमुना विहार करने के लिए जमुना जी के आह्वान किए, लेकिन जमुना जी बलराम जी का प्रभाव वो जानते नहीं, इसीलिए वो आए नहीं। इसीलिए बलराम का मन में बहुत क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया, हॉल उठा करके जब वो जमुना जी को आकर्षित कर रहे थे, उस समय जमुना जी पता चला जाए ये साक्षात भगवान है। तो वो आके क्या किए, जमुना जी बलराम जी के चरण में गिर गए और क्षमा प्रार्थना किए। तो ये जो है लीला, इस लीला में भगवान कृष्ण हलदा रूप धारण करके हास्यरस आस्वादन किए। बलराम जी साक्षात भगवान है कि नहीं? हाँ, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देव श्री बलराम। हाँ, कृष्ण ये कृष्ण जी का दूसरे शरीर है वो बलराम। तो ये इस अवतार में भगवान कृष्ण हर्ष रसादन। इसके बाद भगवान कौन सा रूप धारण करके आए थे? बुद्ध रूप। बुद्ध रूप धारण करके जब आए थे, उस अवतार में भगवान कृष्ण कौन सा रसादन किए? न शांत रस। इसके बाद भगवान कृष्ण जब कल्कि रूप धारण करके आएंगे, कल्कि अवतार में कौन सा रस आस्वादन करेंगे? वीर रस आस्वादन करेंगे। ये भक्ति सिद्धांत शरीर ठाकुर दस अवतार के बारे ऐसा ही भगवान कृष्ण अलग अलग लीला प्रकट करके अलग अलग रस आस्वादन किए। तो भगवान ये कृष्ण ही हर रस के स्रोत हैं। इसीलिए वो भगवान जब अवतार रूप धारण करके आएंगे, तब आने से पहले शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए। इसलिए कौन भगवान का अवतार है, कौन नकली है, हम सभी को शास्त्र से पता चला जाएगा। प्रामाणिक शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए। जैसा चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान साक्षात भगवान कृष्ण है। तो आने से पहले प्रामाणिक शास्त्र श्रीमद् भागवतम और महाभारत, ये दो प्रामाणिक शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। तो पहले जो भागवतम है, भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे ये भविष्यवाणी की क्या ना, 11 स्कंदों में 5वां अध्याय 32 श्लोक में बताया गया है, कृष्ण वर्ण तीसा अकृष्ण संग पंगस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधोषा। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे ये भविष्यवाणी की गए। तो ये कृष्ण वर्ण का मतलब क्या है? कृष्ण ये दो वर्ण सबसे उत्तम वर्ण है, सिलेबल है। हा? दो वर्ण, स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण, दो प्रकार है ग्रामर। तो इनमें से सबसे उत्तम वर्ण ये दो वर्ण है। वो दो वर्ण क्या है? कृष्ण ये दो वर्ण सबसे उत्तम वर्ण है। तो दो वर्ण कृष्ण वर्ण जिनका मुख से हर्ष निकलता है, तो कौन है? वो कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए थे। कृष्ण वर्ण तीसा अकृष्ण, तीसा का मतलब शरीर का वर्ण जो है वो कैसा है? कृष्ण होते हुए भी उनका शरीर का वर्ण कृष्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है? गौर वर्ण है। अकृष्ण, अकृष्ण का मतलब गौर वर्ण है, क्योंकि कृष्ण राधारण के वर्ण धारण करके आए थे। इसलिए राधारण के प्रणाम मंत्र हम सब गाते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी। वो राधारण के वर्ण जब धारण करके आए थे भगवान कृष्ण, उस समय क्या बन गए? तप्त कांचन गौरांग बन गए। तो कृष्ण वर्ण तीसो अकृष्ण संग,
कार्य जो करेंगे वो नकली भगवान ये भंड भगवान ऐसे काम नहीं कर सकेगा। जैसे भगवान रामचंद्र क्या किए और समुद्र पर ये सेतु बना दिया पत्थर से, ये भगवान का अद्भुत कार्य है। 100 जोजन सेतु, वो सेतु कितना लंबी था, 100 जोजन, 100 जोजन का मतलब कितना किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर एक पत्थर के द्वारा बना है, इसे एक सेतु बना दिया। चौड़ा कितना, 10 जोजन, 10 जोजन मतलब क्या है, 120 किलोमीटर चौड़े वाला, हाँ ऐसे रास्ता बना दिया समुद्र पर, ये भगवान का अद्भुत कार्य है। ऐसे भगवान कृष्ण का अद्भुत कार्य क्या है, अपना गुरु जी का मृत पुत्र जमराज के दरबार से उद्धार करके आके वो लेकर के गुरु जी का दक्षिणा प्रदान किया। अपना माता जी जो अपने जो माता जी देवकी के 6 पुत्र कंस द्वारा बध हुआ था, तो सभी को बलि महाराज दरबार से उद्धार करके लेकर के आए थे आगे, और देवकी के माता देवकी के सामने उपस्थित किए। ये भगवान का अद्भुत कार्य है कि नहीं है, ऐसा बहुत सारा अद्भुत कार्य है भगवान कृष्ण के। 7 वर्ष उम्र जब था उस समय गोवर्धन पर्वत धारण किए थे 7 दिन 7 रात को, तो ऐसा बहुत सारा कार्य, नाक पर नृत्य किए थे, बहुत सारा अद्भुत कार्य है। तो ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत कार्य क्या है, जब झारखंड जंगल से जब जा रहे थे वो वृंदावन, और तो उसी समय क्या है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम उन्मत्त था, तो कृष्ण नाम लेकर के जा रहे थे उसी समय, और रास्ता पर एक बड़ा बाघ सोया था, तो महाप्रभु का चरण जब उनका शरीर में स्पर्श हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु बाघ का आदेश किया, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बाघ क्या किए, पीछे 2 पेड़ पर खड़ा होकर के सामने 2 पेड़ आदमी के भांति उत्तोलन करके क्या बोला, कृष्ण कृष्ण, जब मुख में कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण किए, चैतन्य महाप्रभु बाघ को प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु प्रेम नाम लेकर के जा रहे थे, इस समय हिरण आ रहे थे एक दल, तो वहां वो सभी को बोला तुम कृष्ण कृष्ण बोला, तो ऐसा ही हिरण सभी जितने सारे हिरण वो पीछे 2 पेड़ पर खड़ा होकर के सामने 2 पर आदमी के भांति उत्तोलन करके क्या बोले, कृष्ण कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु सभी का प्रेम प्रदान किया। तो चैतन्य अवतार अद्भुत लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा नाम लेकर के जा रहे थे और हिरण और बाघ पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं, तब महाप्रभु भी पीछे और देखभाल कर बोल रहे तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, तक बाघ और हिरण क्या किया, परस्पर का आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, अब बोले कृष्ण कृष्ण, तो बाघ और हिरण दोनों का बीच में क्या संबंध है, एक दूसरे का खाद्य है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से प्रेम प्राप्त है तो हिंसा भाव छोड़ दिया, परस्पर बीच में मैत्री भाव स्थापित हो गया है। ये चैतन्य महाप्रभु का धर्म है, प्रेम धर्म। चैतन्य महाप्रभु का धर्म का मतलब प्रेम धर्म। इस प्रेम धर्म से हर दुनिया में क्या हो जाता है, आदमी का मन में जो हिंसा देश ये सब है वो हट जाएगा, इसके बाद मैत्री भाव प्रकट हो जाएगा। जैसा प्रभुवाद के द्वारा हर दुनिया में प्रचार होने से क्या हुआ, इसके पहले एक दूसरे जाति का बीच में क्या था, शत्रु भाव था, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ विवाद था, लेकिन महाप्रभु का जो प्रभुवाद के द्वारा हर दुनिया में जब चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार होता था, वो प्रेम धर्म जब ग्रहण किए तो उस समय क्या हुआ, आदमी का मन में जो हिंसा देश ये विद्वेष भाव था वो सब हट गया, परस्पर का आलिंगन कर रहा है, परस्पर का देखभाल करके हरे कृष्ण बोल करके प्रणाम कर रहा है कि नहीं है? जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण अभी वो नवद्वीप परिक्रमा होगा, तो नवद्वीप परिक्रमा होता हर पृथ्वी जितने सारे कांट्री हर कांट्री से भक्त लोग आएंगे, आगे परस्पर का दर्शन करके क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण प्रणाम करेंगे, आओ क्या जब परिक्रमा करेंगे, ये महाप्रभु का नाम जय सचिनंदन लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र गा के ऐसा ही परिक्रमा करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित जो धर्म है प्रेम धर्म है, ये वास्तव में असली धर्म है, आदमी के लिए असली धर्म है। तो चैतन्य महाप्रिय भगवान के साक्षात भगवान कृष्ण है, तो इसके इस श्लोक में वही बताता है वो चैतन्य महाप्रिय के बाद जो नंद सुत बोले जा रहे भागवत गाय से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। तो जो नंद सुत ओ थे वही अभी चैतन्य महाप्रभु सचि सुत बन करके आए हैं। हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। तो इसके बारे में ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है? भगवान जो कुछ बताएंगे वो वेद वाक्य माना जाता है, वेद वाणी। हाँ? जैसे भगवान कृष्ण गीता उपदेश दे वो वैदिक शास्त्र के सार उपदेश है कि नहीं। हाँ? ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम दे है वो जितने सारे वैदिक शास्त्र है शास्त्र का जिष्ट है कि नहीं। वो आठ श्लोक पर बेस करके गोस्वामी वो बहुत सारे किताब लिखे हैं। तो वो सभी ग्रंथ के सार है, आठ श्लोक है। हाँ? तो ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी है। तो ऐसा ही भगवान जो बोलते है वो वेद वक्त है कि नहीं। हाँ? पांचवा लक्षण क्या है? भगवान का हाथ पैर में ऐसा सा चिन्ह है, वो नकली भगवान के हाथ पैर में ऐसा चिन्ह नहीं देख सके। हाँ? आज ये बाबा भगवान, वो बाबा भगवान, कितने सारे भगवान। हाँ? लेकिन उसके बारे शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, है क्या? हाँ? वो सभी विश्व रूप प्रकट कर सकता है? नहीं। हाँ? ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता है? नहीं। ऐसा ही वो जो हाथ पैर में ऐसा चिन्ह भी नहीं है। हाँ? तो ऐसा ही ये सत्रह सा इस सॉरी अठारह सा इकहत्तरी इकहत्तरी मशारण 1871। हाँ? एक ऐसे नकली भगवान का आविर्भाव हुआ था हमारा, वो भुवनेश्वर खंडगिरी जंगल में। हाँ? वो एक जोगी था, ऋषि किशन नाम था। तो ऋषि किशन योग साधन करके कुछ योग शक्ति प्राप्त था, योग शक्ति से आदमी का बड़ा बड़ा रोग सब ठीक कर दिया था। इसलिए वो हजार हजार आदमी सब उनके फॉलोअर बन गए। जब हजार हजार आदमी उनके फॉलोअर बन गए तब उसी समय क्या किया, ऋषि किशन बोल रहा था मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। हजार हजार अनुगामी जब बन गए तो वो अपना प्रचार कर रहा है कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। और 1871 ख्रिस्ट आब्द में मैं क्या करूंगा, न मृक्षों को संहार करूंगा, चतुर्भुजा रूप धारण करके मृक्षों के संहार करूंगा। तो मृक्ष कौन है? उसका ब्रिटिश शासन चल रहा था। हा? वो सभी को कत्ल करेंगे। हाँ, आओ ठीक है। तो इसके बाद वो क्या करते, भगवान का अवतार, इसीलिए वो रासला करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हाँ, तो रासला कैसे करेंगे? तो नस्तिक में जो गांव है चौधरी गांव, गांव के जितने सारे रमणी है स्त्री है वो सभी का सभी के पास वो पत्र भेजा था, मैं मधुमास पूर्णिमा रात्रि में रासलीला करूंगा, तुम सब गोपी रूप धारण करके आएंगे, तुम सभी के लिए मैं रासलीला करूंगा। तो ठीक है। तो चौथोवर मधुमास पूर्णिमा रात्रि आने से पहले वो नकली भगवान क्या किए, किसी एक चौधरी बाबू के स्त्रियों के साथ अवैध काम किए। तो अवैध सब काम किए तो चौधरी बाबू क्या किए, उस समय उड़ीसा में जो गवर्नर थे रेवंशा साहेब, रेवंशा साहेब के पास एक पत्र भेजा, ये तो भगवान का अवतार है, भगवान अवतार होते हुए भी कैसे मेरा स्त्री के साथ अवैध काम किया। तो रेवंशा साहेब का दोस्त था, मित्र था वो केदारनाथ दत्त, केदारनाथ दत्त का मतलब हमारा ये भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ? तो इस समय केदारनाथ दत्त उड़ीसा में डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। और जगन्नाथ जी मंदिर 5 साल के लिए वो अध्यक्ष पद में पद पर थे। तो क्या हुआ, रेवंशा साहेब वो केदारनाथ दत्त को बोले तुम आप जाके ये परीक्षा करके देखना चाहिए भगवान की भंडा। हाँ, तो भक्ति केदारनाथ दत्त क्या किया, उस समय वो गीता पकड़ के आए थे, वो खंडगिरी जो जंगल है, खंडगिरी में जो जंगल है उस जंगल में जो ऋषि किशन जो योगी थे उनके पास आज सम्मुख जब आके उपस्थित हो गए तो ऋषि कृष्ण ने बोल रहे थे, ओहे केदार बाबू, मैं तो सचल जगन्नाथ हूँ, मेरे चरण में शरण लेकर के मुझे भजन करो। हाँ, वो क्योंकि आप वो जो लकड़ी कट निर्मित जगन्नाथ, हाँ वो जगन्नाथ के क्यों आप भजन कर रहे हैं, उनका भक्त बन क्यों बन गया, मैं तो सचल जगन्नाथ हूँ। तो केदारनाथ दत्त तो उस समय पता चला गया ये एक भंड है, जगन्नाथ जी के बल है वो लकड़ी कास्ट काट द्वारा निर्मित एक ये है मूर्ति है, उनके क्यों उनका चरण में क्यों शरण में गया, मैं तो सचल जगन्नाथ हूँ। तो वो रेवंश साहब के रिपोर्ट दे, ये भंड है, इनके अरेस्ट जल्दी 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 इनका अरेस्ट करना चाहिए। तो ये बात सुन करके वो रेवंश साहब पुलिस के साथ पुलिस कांस्टेबल को भेजा था अरेस्ट करने के लिए। तो पुलिस कांस्टेबल पुलिस के साथ आके वो नकली भगवान वो जो ऋषि कृष्ण अरेस्ट करके पूरी जेल में डाल दे, पूरी जेल में जब डाल दे तो उससे उनके बहुत सारे अनुगामी थे, हजार हजारों अनुगामी सब आके उत्पात कर रहे हैं, हमारे भगवान क्यों की जेल में डाला, ये छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब तुम्हारा भगवान इतना ऐसा ही भगवान जेल से मुक्त हो नहीं सके, हाँ कि ऐसा भगवान है हमारे भगवान कृष्ण कंस के जेल में जन्म लिया है, हाँ ले करके वो कंस को मार डाले, मार करके अपना पिता माता देवी वसुदेव के कंस के कारागार से मुक्त किए, हाँ ये कैसा भगवान है, पुलिस आदमी पकड़ करके जेल में डाल दे वो जेल से मुक्त नहीं हो सके, कैसा भगवान है। तो ठीक है, तो बहुत सारे उत्पात कर रहे हैं। तो उस समय जोगी क्या किए, जोग शक्ति प्रयोग किए, तो केदारनाथ दत्त के उस समय 8-10 लड़का लड़की थे, उनमें से हमारा वो प्रभुपाद जी के गुरुदेव जब विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरसठक, हाँ उन्होंने भी थे, हाँ तो किया है सब वॉमिटिंग कर रहे हैं, हाँ तो इतना वो डायरिया हो गया, हाँ तो डायरिया जब हो गया केदारनाथ दत्त के जो स्त्री है भक्ति सिद्धांत सरसठ के माता जी, हाँ बोले आप क्योंकि ऐसा ही भगवान को जेल में डाला, हमारे लड़का लड़के क्या हाल ये क्या हो गया, हाँ तो भक्ति विनोद केदारनाथ दत्त उस समय बोला नहीं नहीं वो एक भंड है, तुम सब नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम करने के लिए वो आदेश दे केदारनाथ दत्त, और जाके रेवंश साहब के बोले ये एक जोगी है, जोगी का सिर पर जब तक वो जो बाल रहेगा, हाँ क्या बाल, हाँ तो तब तक वो जोग शक्ति प्रयोग कर सकता है, तो बाल शीश से अलग करना चाहिए। तो जब ऐसा है बोला तो रेवंश साहब साइन किए, हाँ जल्दी तो उनका शीश से वो बाल अलग कर दो। तो उस समय जोगी का जो सिर पर जो जटा था बाल जो था वो अलग कर जा दिया, तो उनका जो जोग शक्ति खत्म हो गया। तो ये 3-4 घंटा नाम करने से डायरिया से सब सुस्त हो गया। तो वो जोगी ऐसा ही 21 दिन में वो पूरी जेल में मर गया। तो ये कलियुग का भगवान, तो कलियुग जो असली भगवान चैतन्य महाप्रभु, इसके बारे किसी कोई पता नहीं है, शास्त्र में उल्लेख है, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले शास्त्र में उल्लेख है कि नहीं, लेकिन ये जितने सारे नकली भगवान भंड भगवान बहुत सारे है, ये सब के बारे शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए शास्त्र से समझना चाहिए कौन असली भगवान है और कौन नकली भगवान है। तो कृष्ण जब अवतार रूप धारण करके आएंगे वो आने से पहले शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए, जैसा बुद्ध देव आए थे, बुद्ध देव आने से पहले शास्त्र में उल्लेख था, इसके बाद वो भगवान कृष्ण कल्कि अवतार रूप धारण करके कलियुग अंत में आएंगे, तो कल्कि अवतार के बारे वो शास्त्र में उल्लेख है। तो हम सभी शास्त्र से ये निर्णय करना चाहिए कौन असली भगवान है कौन नकली भगवान है। जय श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की, जय श्री राधा वृंदावन बिहारी गौर सुंदर की, जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय समवेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल गोवर्धन इको विलेज। आज यहाँ से निकल जाऊंगा तो चौपाटी में जाना है ना। ढाई बजे से, तो एक बोला था, पर ठीक है प्रसाद लेकर के। हाँ,